জানে হরি, কালি বলো ভজন ভরি। হরি হরি নাম গে গে, ও হরি নাম গে গে, রস গল যায়, রস গল যায়, ঢোল ঢোল গোরাচা হরি গুণ গায়, ঢোলে ঢোলে গোরাচা হরি গুণ গায়। আসিয়ার যমুনার কূলে নাচে হরি হরি বোলে, যমুনার কূলে নাচে হরি হরি বোলে, যমুনা উঠোলে সে চরণ ধোয়া, চরণ ধোয়া ভুল হরি ভুল
হরে হরে Ram Hare Ram 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 Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna
Krishna Krishna Hare
Hare Hare
Hare Ram Hare Ram
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna.
Krishna Hare
Hare
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare
Ram Hare Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare
Hare Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram
Hare Bol Hare Bol Hare Bol Jai Om Vishnu Pada Paramahamsa Parivrajakacharya Shrodhara Shri Srimad His Divine Grace is Sri Bhaktivedanta Swami Shiva Prabhupada Ki Jai अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राम कुल राधा कुल गिरी गोवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, मायापुर धाम की जय, पंढरपुर धाम की जय, नैमिषारण्य धाम की जय, गंगमयी जमुनामयी की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गोनिताय की जय, राधा गोपीनाथ की जय, राधा गोविंद देव की जय, श्री कृष्ण बलराम की गानिताय गौर प्रेमर हरि और गुरु सुध सिंपल दिखोड़ी लाल गुरु सुध सिंपल दिखोड़ी लाल गुरु सुश्री गुरु श्री गौराम
भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् हे कृष्णा सिंधो दीन बंधो जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः Yeah.
नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नस्य प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया परवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अनार्पितचिराम् अवतीर्णाकलो समर्पयितुम् उन्नत उज्ज्वल रसाम् स्वभक्तिम् पुरत सुंदर द्युति कदंब संदीपिता कदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनन्दनः कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम की हमने क्या कहा ग्रंथराज भागवतम कैसा है ग्रंथराज मतलब ग्रंथों का
राजा
है ग्रंथों का राजा श्रीमद्भागवते मुनि कृते श्रीमद्भागवतम की रचना मुनि कृते महामुनि कृते महामुनि श्रील व्यासदेव की रचना है ये ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् वास्तविकता है इसमें काल्पनिक नहीं है प्रारंभ में ही कहा वास्तविक तथ्य है सत्य है इसमें वास्तव मात्र वस्तु शिवदम् मंगल मंगल करेगा ये ग्रंथ का ज्ञान सारे संसार में मांगल्य का वितरण करेगा ये भागवतम तापत्रय उन्मूलनम तापत्रय त्रिविध ताप तीन प्रकार के ताप आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक तापत्रय उन्मूलनम क्या समझे आप उन्मूलन ये समस्या नहीं रहेगी, कोई समस्या नहीं रहेगी। समस्या को मूल से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। समस्या का कारण ही नहीं रहेगा। ऐसी औषधि है, ऐसी दवा है, भवौषधि। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जा। तो शौनकादि मुनि ने पूछा था, केन स्थाने केन हेतुना, किस काल में, किस स्थान में, किस कारण ये श्रीमद् भागवत की रचना हुई और फिर उसका प्रवचन भी हुआ। सुखदेव गोस्वामी प्रवचन सुनाए, तो इसके उत्तर में सुत गोस्वामी किसको सुनाया भागवतम, राजा परीक्षित को सुनाया। कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वा केन हेतुना। इसको समझाने के लिए अब लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो ये भागवत सुनाए, उस समय का इतिहास बताएंगे सुत गोस्वामी। तो 5000 वर्ष पुराना इतिहास का नाम क्या है, क्या है? महाभारत। तो महाभारत सुनाएंगे सुत गोस्वामी। इस प्रथम स्कंद के अध्याय क्रमांक 7 से कहिए, अध्याय क्रमांक 7 से 19 तक, कुल 19 से 21 है अध्याय। इसमें उन्नीस अध्याय है। प्रथम स्कंद में कितने अध्याय है, 19 अध्याय है। तो 7 से लेकर 19 अध्यायों तक ये लगभग महाभारत ही है। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, यहां से शुरुआत करते हैं। मतलब कुरुक्षेत्र के युद्ध के तुरंत बाद की जो घटनाएं हैं, वहां से शुरुआत करेंगे। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, फिर अश्वत्थामा ने बदला लेने का प्रयास किया, पांडवों का जो वंश है उसका समूल नष्ट करने का, उसका मूल। तो पहले तो 5 पांडवों के 5 पुत्रों की उसने हत्या की,
तो उसी समय अर्जुन के पुत्र जो पहले ही मारे गए थे, क्या नाम उनका, अभिमन्यु की मृत्यु हुई, तो अभिमन्यु के पुत्र अब तक जीवित है, जीवित क्या, अभी तक उन्होंने जन्म भी नहीं लिया था, उत्तरा के गर्भ में थे। अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित है, तो उसको भी निशाना बनाया था ये अश्वत्थामा, पाही पाही महाबाहो, रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान ने रक्षा की। उस ओर से आ रहा था अरे वो ब्रह्मास्त्र, तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र, एक विशेष अस्त्र, सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र, लेकिन भगवान को जिसने पुकारा, भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, शरणागतों की, तो उत्तरा भगवान की अति प्रिया, प्रिय भक्त, रक्षा करो रक्षा करो, तो भगवान भगवान प्रवेश की, गर्भ में प्रवेश किए छोटी गदा लेके प्रवेश किए और स्वयं ही रक्षक बने राजा परीक्षित के। जैसे चौकीदार घूमता रहता है अपने मालिक की जो प्रॉपर्टी है, सीटी बजाता हुआ जैसे घूमता रहता है डंडे को हाथ में लेके, कोई आता है उसको उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ देगा, तो भगवान भी यहां स्वयं गार्ड बने हैं। तो राजा परीक्षित की रक्षा हुई, तो राजा परीक्षित ने जैसे ही जन्म लिया तो कृष्ण की खोज उन्होंने प्रारंभ की। जिस रूप का मैंने दर्शन किया था मेरी मां के गर्भ में, कहां है वो रूप, कौन सा है वो रूप, क्या ये वो रूप है, हाँ वो ये तो नहीं है, वो है ये भी नहीं है, ये है ये भी नहीं है, ऐसी परीक्षा करते गए, परीक्षा कर रहे, जिस रूप को देखते थे नहीं ये भी नहीं है, व्हाट अबाउट दिस, ये भी नहीं है, तो एग्जामिनर बने हुए, एग्जाम परीक्षित मतलब क्या है, परीक्षक, परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे क्या ये वो रूप है, क्या ये वो रूप है, ये भी नहीं है, नेति नेति, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, इसलिए उनका नाम ही हो गया क्या, परीक्षित हो गया। तो सुध गोस्वामी यहां से प्रारंभ करते हैं, कि जो भागवत के श्रोता बनेंगे उनके संबंधित जो इतिहास है, उनके रक्षा के समय से गर्भ में है रक्षा, फिर जन्म, फिर आगे का उनका चरित्र, और भगवान का भी द्वारका लौटना, द्वारका की कुछ घटनाएं, क्या घटना वैसे? अब तो धीरे धीरे भगवान अपने धाम ही पधारने वाले थे, तो अर्जुन जाते हैं, साथ में गए अर्जुन, या खबर करवाने भेजा युधिष्ठिर महाराज, जाओ द्वारका जाओ, समाचार लेके आना। तो 7 महीने बीत गए, अर्जुन लौटे ही नहीं। तो सारे चिंतित और कई सारे लक्षणों से, अशुभ लक्षणों से मन में शंका उत्पन्न हो रही थी कि इससे हमें यह समझना है क्या कि प्रभु अब संसार में नहीं रहे। विचार मन में तो आ रहे थे लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। तो अंत में आ ही गए, अर्जुन लौटे तो उनका चेहरा, जिस पर अब पहले की मुस्कान, पहले जैसी मुस्कान नहीं रही, निस्तेज, बड़े दुखी। तो समझ गए, बिना पूछे वे समझ गए। तो इस समाचार के साथ में से कुंती ने तो अपना देह त्याग दिया। जब कृष्ण नहीं रहे, शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे। अब गोविंद नहीं रहे तो ये सारा जगत तो शून्य है। तो कुंती माता ने तुमने अपने प्राण ही त्याग दिए। पांच पांडवों ने इष्ट गोष्ठी की, एकत्रित आके चर्चा की और उन्होंने निश्चय किया कि हम अब सेवानिवृत्त होंगे, ये राज का कारोबार नहीं संभालेंगे, हम उत्तर दिशा में आगे बढ़ेंगे। जैसे हमारे नारद मुनि भी उत्तर दिशा में जा रहे थे। साथ में द्रौपदी भी जाएगी, एक साथ में कुत्ता भी जाने वाला है, जैसे महाभारत। तो जाने के पहले उन्होंने क्या किया, राजा परीक्षित को उनका राज्याभिषेक किया। और वे करते रहे राज। तीस साल उन्होंने राज किया और फिर वो दुर्दिन, वो अशुभ दिन आ पहुंचा। जिस दिन वे गए थे वन में, गए शिकार करने के लिए गए, गर्मी के दिन, बड़ी प्यास लगी उनको, एक आश्रम में प्रवेश किया। अरे पानी है, पानी पानी, कोई जल दे सकता है? तो किसी ने पानी लेके, कोई पानी का लोटा लेके कोई दौड़ा नहीं, लेकिन सामने देखते हैं तो एक ऋषि बैठे हैं ध्यान अवस्था में, सम्यक ऋषि बैठे। पानी चाहिए पानी, बहुत प्यास लगी पानी। राजा सोच रहे थे ये सम्यक ऋषि तो ढोंग कर रहे हैं, खैर मैंने जैसे ही प्रवेश किया तो झट से बैठे हुए आसन में बैठे ताकि आतिथ्य नहीं करना पड़े उनको, और कोई ज्यादा तो मांग नहीं कर, केवल पानी की मांग और कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा अपमान है, मैं इस विश्व का सम्राट और इस आश्रम में पानी भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने बदला लेना लेने का विचार किया। बगल में देखा कुछ दूरी पर एक मृत सर्प दिखाई दिया, अपने बांध से उठा लिया और ध्यानस्थ सम्यक मुनि के गले में उन्होंने सर्प की माला पहनाई और चल पड़े। इतने में लौट आए श्रृंगी आए, सम्यक ऋषि के पुत्र जो छोटा बालक ही था। बालक का कार्य क्या होता है, क्या करते हैं, उनको क्या पसंद होता है, सबसे अधिक खेल पसंद होता है। कल आपने नोट किया था, आज भूल गया आप। बालावस्था क्रीड़ा सकता, क्रीड़ा में आसक्त बालक तो खेलने गया था। लौट के आके देखता है तो पिताश्री के गले में सर्प की माला। तो ब्राह्मण बालक उसको थोड़ा विचार करना चाहिए था, कुछ तुरंत ही उसने शाप दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में ये सर्प डाल दिया है उस व्यक्ति की मृत्यु होगी 7 दिन में, और एक सर्प ही उनको काटेगा, सर्प दंश से उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। तो हुआ, तो सम्यक ऋषि ने जब ये शाप की बात को सुना तो बड़े बड़े दुखी हुए, ऐसा शाप नहीं देना चाहिए था। तो उधर राजा परीक्षित को पता चलता है, अब ब्राह्मण बालक, उन दिनों के ब्राह्मण तो बड़े पक्के ब्राह्मण, बड़े ओजस्वी तेजस्वी ब्राह्मण, उनके वचन कभी झूठ नहीं होते, मानो उनके मुख्य वचन वेद वाणी सत्य वचन। तो शाप दिया तो वैसे ही होगा। तो राजा परीक्षित तैयार हो जाते हैं मृत्यु के लिए, तैयार मरने के लिए तैयार। सारा कारोबार छोड़ दिया, त्याग दिया, राजा की वेशभूषा भी उन्होंने उतार के बगल में रखी, महल में रखी, लंगोट ही पहन लिए, घर से बाहर हस्तिनापुर शहर से बाहर आए, गंगा का तट वहां बैठ गए। अब 7 दिवस शेष है। तो समाचार फैल गया विश्व भर में, राजा परीक्षित नहीं रहे, हाहाकार मच गया, शोक लोग करने लगे। कई सारे हस्तिनापुर की ओर दौड़े, सज्जनों की भीड़ उमड़ आई। वहां ऋषि मुनि एकत्र हुए, विचार विमर्श होने लगा। क्या करना चाहिए? 7 दिवस की अवधि है, 7 दिवस को कैसे बिताना चाहिए राजा परीक्षित को, ताकि हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि क्या हो जाए? अंते नारायण स्मृति ही, अंत में इनको नारायण की स्मृति हो जाए। तो कई सारे प्रस्ताव, इनको ये योग करना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, कुंडलिनी को जागृत करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। किंतु ये सारे प्रस्तावों को ठुकराया गया। वो सारे वही प्रस्ताव थे, धर्मादयश्च यथा मुनिवर्यानु, आप मुनिवर्य, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इस पर तो बहुत जोर दिया है, वासुदेवस्य महिमा ही न अनुवर्णितः, तो वहां भी सारा समाज पहुंचा था, कई अलग अलग स्तर के संत महात्मा अपने अपने स्तर के, तो अपने अपने अपना अपना जो पथ है वो सारा मत, यत मत तत पथ, पिंडे पिंडे मतिर्भिन्ना, पिंडे पिंडे मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, जितने मुंड है पिंड है उतनी मति है। तो कई सारे प्रस्ताव, जिसको सर्वधर्मान परित्यज्य कहा है, इसको भी त्यागो इसको भी त्यागो इसको भी त्यागो, लेकिन वहां कहने नहीं, इसको भी करना चाहिए, राजा परिस्थिति करना चाहिए, और इनको तो ध्यान करना चाहिए भी 7 दिवस, इनको कर्मयोग करना चाहिए, तो कोई क्या करे कोई क्या। जितनी जितनी बातें ग्रंथों में शास्त्रों में धर्म के अंतर्गत है वो सब करने के लिए कहा जा रहा था। तो इतने में आ जाते हैं, वैसे सुखदेव गोस्वामी वहां आ गए, हरि वो तो सब उठ के खड़े हुए, सभी ने सत्कार सम्मान किया, स्वागत किया सुखदेव गोस्वामी का, उनको आसन दिए। तो उनके उपस्थिति में सब समझ गए, बाकी सब तो राजा परिषद को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है भी, पहले के जो प्रस्ताव, इनको क्या करना चाहिए? भागवत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो उस सभा में ये निष्कर्ष निकला। पुनः लोग भूल जाते हैं, ये समझते नहीं है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण ही सर्वोपरि है। तो सभी बैठ गए, सभी ने अपने मुख बंद कर दिए, प्रस्ताव को हटा लिया उन्होंने, पीछे लिया। अरे की प्रस्ताव, अब क्या 7 दिवस के लिए क्या होगा? सदा सेव्या, सदा सेव्या भागवती कथा, श्रीमद् भागवती कथा, श्रीमद् भागवत कथा होगी, इसका सेवन होगा। नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठ की। तो सभी बैठ गए। और कथा प्रारंभ हुई श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंत में। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है द्वितीय स्कंद से। फिर सुखदेव गोस्वामी पुनः कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और द्वितीय स्कंद प्रारंभ हुआ। और श्रीमद् भागवत की सुखदेव गोस्वामी द्वारा कही गई भागवत कथा द्वितीय स्कंद से प्रारंभ होगी। तो जैसे भी प्रश्न पूछा था शौनक आदि मुनियों ने, किसने कथा सुनाई, किसको सुनाई, कहा सुनाई, कब सुनाई, ये जो पार्श्वभूमि है, ये सेटिंग ऑफ द सीन है, इसको समझाने में ही प्रथम स्कंद पूरा होता है। जैसे भगवान का गीता का प्रवचन भी भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से ही शुरू होता है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में भगवान, उसको भगवत गीता ही हम लोग कहते हैं, प्रथम अध्याय को, गीता के प्रथम अध्याय को भी हम लोग गीता कहते तो है, लेकिन भगवत गीता मतलब भगवान का गीत, लेकिन प्रथम अध्याय में तो भगवान का तो कोई गीत है नहीं। वह अर्जुन ने ही गीत गाया है, या औरों ने कुछ बातें कही है, धृतराष्ट्र ने शुरुआत की है, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये तो धृतराष्ट्र का गीत हुआ। फिर संजय उवाच है, फिर दुर्योधन ने भी कुछ बातें कही है, और अधिकतर है अर्जुन उवाच। और प्रथम अध्याय में भगवान ने कुछ शब्द जरूर कहे हैं, पूरा वाक्य भी नहीं कहा। पश्य एतान, इतने वचन है शायद, पश्य एतान समवेतान कुरुन, तो 4-5 शब्द भगवान ने कहे। प्रथम अध्याय श्लोक संख्या शायद 25 हो सकता है, आप देख लो, फर्स्ट चैप्टर 25th वर्स। तो भगवान ने, अर्जुन ने जब कहा, ए मेरा रथ आगे बढ़ाइए, दोनों सेना के मध्य में मेरा रथ को खड़े कीजिए, तो भगवान ने वैसे ही किया, रथ को आगे बढ़ाया, दोनों सेना के मध्य में जब रथ अब था, तो भगवान ने कहा, तुम देखना चाहते थे ना किनके साथ तुम्हें युद्ध करना है, तो देखो पश्य, हे पार्थ देखो। और अर्जुन जब देख रहे थे, तो भगवान ने क्या कहा, समवेतान पश्य एतान समवेतान कुरुन, देखो तो देखो तुमको किनके साथ युद्ध करना है, तुमको तो कुरुओं के साथ ही तो युद्ध करना है, भगवान का तात्पर्य था कि तुम भी कुरु हो और जिनके साथ तुम्हें युद्ध करना है वे भी कौन है, वे भी कुरु ही है, तुम दोनों कुरु वंशज हो, मतलब अपने सगे संबंधियों के साथ ही तुम्हें युद्ध करना है। सोचो, मानो भगवान नहीं कहते हुए बहुत कुछ भगवान वहां उस उन कुछ शब्दों के संकेत, कई सारे संकेत मिलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहा लेकिन बहुत कुछ कहा भी। और तब से तो अर्जुन की मति भ्रमित हुई और मोह माया जागृत हुई, नहीं तो अर्जुन वैसे युद्ध की पूरी तैयारी करके और अर्जुन जैसा योद्धा नंबर वन सारे ब्रह्मांड का नंबर टू बन सकते थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को दक्षिणा दो, मैं गुरु हूं ना, ठीक है दक्षिणा दो, क्या दक्षिणा दो, दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो, ठीक है आपकी सेवा में मेरा दाहिने हाथ का अंगूठा। तो फिर अर्जुन हो गए नंबर वन, नहीं तो एकलव्य भी जिसको जो द्रोणाचार्य गुरु मान के बैठे थे, तो वैसे यत्र योग तो प्रथम अध्याय में भगवद गीता के भगवान नहीं कुछ ही शब्द कहे हैं, द्वितीय अध्याय से उनका प्रवचन प्रारंभ होता है गीता में, तद्वत् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो प्रवचन है वो द्वितीय स्कंध से प्रारंभ होता है। तो ये पूरा स्कंध या अध्याय संख्या 7 से लेकर 19 तक ये पार्श्वभूमि प्राक कथन कहे हैं सुत गोस्वामी, क्योंकि ऐसा प्रश्न इसी वन में शवनका आदि मुनि पूछे थे, तो उसके उत्तर में ये सब महाभारत ही वो सुनाए। तो आज प्रातः काल में कुंती की प्रार्थनाएं कुंती महारानी की प्रार्थना जो प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में है, उसमें से सभी प्रार्थना नहीं, कुछ प्रार्थनाएं हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान जैसे ही उस कुरुक्षेत्र भूमि से हस्तिनापुर वैसे लौटते हैं, पांडवों की जीत हुई, तो पांचों पांडवों के साथ भगवान पहले हस्तिनापुर आते हैं और वहां कई महीने बिताते हैं, युधिष्ठिर महाराज को संग देते हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत शोक कर रहे थे और मेरे कारण ही तो कितने लोग 64 करोड़ की जनता अपने जान को खो बैठी, कितने लोग मारे गए थे 64 करोड़। तो ये समझना कि अब आबादी बढ़ी है, पहले कम थी, ये झूठ बात है। महाभारत को इतिहास अगर हम समझते हैं तो महाभारत 5000 वर्ष पूर्व जितनी आबादी, जितने मनुष्य थे पृथ्वी पर, और युद्ध में ही 64 करोड़ मारे गए, उसमें से मतलब स्त्रियां नहीं मारी गई थी, बच्चे भी नहीं मारे गए थे। 5 बच्चे बाद में पांडवों के 5 बच्चे ही अश्वत्थामा ने मारे, वृद्ध मारे नहीं गए थे, और कौन कौन नहीं, ब्राह्मण नहीं मारे गए थे, वैश्य भी नहीं, शूद्र भी नहीं। युद्ध किन को, धर्म युद्ध होने के कारण क्षत्रिय लड़ रहे थे, जो क्षत्रिय थे वे लड़ रहे थे, तो क्षत्रिय तो एक वर्ण हुआ, और 3 वर्ण के लोग ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है, वे तो सुरक्षित है। और जो भी जवान क्षत्रिय, कोई बालक नहीं मारा गया, कोई बूढ़ा नहीं मारा, ऐसी व्यवस्था हुआ करती, ये धर्म युद्ध है। आजकल के युद्ध जैसा नहीं, रात्रि के समय बम भर के एक विमान भेजा जाएगा, और नागपुर की जनता जब सोई है तो बम की वर्षा करो, ये चिंता नहीं कि इसे स्त्रियां मारी जाएगी या बच्चे मारे जाएंगे, बूढ़े मारे जाएंगे, जब सोए तो ये तो कायरता हुई, इसने शौर्य, शूरता, वीर्य इसका प्रदर्शन नहीं है, ये तो डरपोक कही के, ये शूद्र है। कलौ शूद्र संभव, कहा है क्षत्रिय जो कहे आ जाओ, ठीक है तुम्हारे हाथ में भी गदा नहीं है, मैं भी अपनी गदा क्या करता हूं, फेंक देता हूं, आ जाओ, ऐसे ही बिना शस्त्र हम लोग लड़ेंगे, या तुम भी ले लो गदा, तुम्हारी गदा टूट गई ले लो दूसरी गदा, तैयार हो जाओ। और प्रातःकाल के समय युद्ध का प्रारंभ कब, सूर्योदय के समय, तो भगवत गीता जो भगवान ने कही कितने बजे कही होगी, 7:30 बजे सूर्योदय के समय कुरुक्षेत्र में, उस दिन एकादशी का भी दिन था, जिस दिन युद्ध प्रारंभ हुआ कुरुक्षेत्र का, वो दिन कौन सा था, महाभारत चल रहा है, थोड़ा भी भागवत है लेकिन महाभारत का ही टॉपिक है, उस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातःकाल में जैसे ही दोनों सेना वहां पहुंची, और भगवान ने दोनों सेना के मध्य में अर्जुन का रथ खड़ा किया, और अर्जुन ने देखा तो भ्रम में, मोह माया में फंसे हुए, तो ऐसे भ्रमित और व्याकुल अर्जुन को पुनः तैयार करने के लिए, युद्ध के लिए भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया। युद्ध प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तो प्रातःकाल में सूर्योदय के समय जैसे धर्म युद्ध प्रारंभ होते थे, ये गीता का उपदेश सुनाए भगवान। तो भागवतम तो 7 दिवस सुनाया जा रहा था, भगवत गीता बस 1 घंटे भर में भगवान ने सुनाई भगवत गीता। इसका पूरा पाठ करेंगे तो जो अच्छा उच्चारण करना जानते हैं, घंटे भर में पढ़ सकते हैं। सात सौ तो श्लोक है, तो सारे श्लोक तो नहीं कहे गए थे, भगवान ने तो भगवान के कुछ 600 से भी कम ही अपने अपने वचन है, मैं भी भूल गया सिर्फ। वैसे सारा कोई कठिन नहीं है, धृतराष्ट्र ने उनका एक वचन है, फिर संजय के कुछ 40 एक वचन है, संजय फिर अर्जुन के है, और शेष बचे हुए भगवान श्री कृष्ण के वचन है। तो कृष्ण अर्जुन का संवाद तो घंटे भर का ये मामला, ये संवाद। खैर ठीक है, तो हम तो भगवान वहां से कुरुक्षेत्र से युद्ध कितने दिन हुआ? 18 दिन युद्ध हुआ। आपकी जानकारी के लिए युद्ध 18 दिन चलता रहा। अब भगवद गीता में अध्याय कितने हैं? वो भी 18 अध्याय है। और महाभारत में कितने पर्व है? वो भी 18 पर्व है। महाभारत में 18 पर्व है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चलता रहा और अध्याय गीता के 18 है, और श्रीमद् भागवत के श्लोक कितने हैं? वो भी 18,000 है। तो ये 18 पुराण भी है, वेरी गुड। और कोई है बात ऐसी? हाँ अठारह अक्षोहिणी, वेरी गुड, यस। 18 अक्षोहिणी सेना भी थी, सात अक्षोहिणी सेना पांडवों की थी, 18 का भी बंटवारा है, दो भाग थे। तो पांडवों की सेना 7 अक्षोहिणी सेना और कौरवों की 11 अक्षोहिणी सेना, 7 और 11 18 अक्षोहिणी सेना भी थी, वेरी गुड। तो उस युद्ध के समापन के बाद भगवान पांडवों के साथ हस्तिनापुर लौटते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि वैसे युधिष्ठिर महाराज बहुत बहुत शोक कर रहे थे, तो भगवान ने कुछ सांत्वना देने का खूब प्रयास किया, तो कुछ तो समझ रहे थे। तो भगवान ने सोचा कि अब मुझे लौटना चाहिए। कहां लौटना चाहिए? मुझे द्वारका लौटना चाहिए। द्वारका लौटने की तैयारियां हो गई, भगवान रथ में बैठे थे, उद्धव भी साथ में जाएंगे और सात्यकी वो भी जा रहे हैं। तो कुंती आ जाती, कुंती माता आ जाती है, भगवान अब विदाई का समय, अब जा रहे हैं, भगवान रथ में बैठे हैं, कुंती माता उनके समक्ष है, रथ में नहीं सामने है, और प्रार्थना कर रही है। कुन्त्युवाच नमस्ते पुरुषं त्वद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। तो श्रीमद् भागवत की ये पहली प्रार्थना, ऐसी कई सारी प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत में मिलेगी, श्रीमद् भागवत की पहली प्रार्थना और वो भी एक माता के द्वारा, कुंती माता के द्वारा पहली प्रार्थना हो रही है। और ये माता होते हुए भी देखिए इनका भाव और ज्ञान और साथ ही साथ उनका विनय, विनयी भाव। नमस्से पुरुषम त्वाद्यम, नमस्से मतलब नमस्कार है, नमस्कार है, प्रणाम, स्वीकार कीजिए मेरा। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आदि पुरुषम, तो नमस्से पुरुषम त्वाद्यम, वही बात है, गोविंदम आदि पुरुषम त्वाद्यम, आप आदि पुरुष हो, ईश्वरम, आप ईश्वर हो, आप परमेश्वर हो, आप आदि पुरुष हो। भगवान कैसे है? आदि पुरुष है, पहले पुरुष, आदि मतलब सर्वप्रथम कौन संसार में? भगवान है। ये भगवान की ये परिभाषा भी है, भगवान या गॉड वो है। छोटे बच्चों के लिए भी अच्छी ये आर्ग्यूमेंट, ये तर्क वितर्क, तो हाँ, भगवान वो व्यक्ति है अनादिर आदिर गोविंदम, ऐसे समझना होगा, अनादिर अनादिर आदिर गोविंदम। गोविंद कैसे? जो सभी के आदि है लेकिन उनका कोई आदि नहीं है, वो गोविंद है, वो भगवान है। जो सभी के स्रोत है, सभी के मूल वे है लेकिन उनका कोई स्रोत नहीं है, ऐसे एक ही है, वह है गोविंद। और सभी का तो स्रोत है, और कोई ऊपर वाला या जिसने जिसने उन्हें बनाया, तू बेड़ा कुंभार, तू च घड़ विसी, तू च फोड़ीसी, वगैरह वगैरह, जो आप करने वाले ब्रह्मांड भी, फिर और भी जन्माद्यश्च यतः, आप सभी के स्रोत हो लेकिन आपका कोई स्रोत नहीं है, आप सभी के आदि हो, ओरिजिन हो, लेकिन आपका कोई दूसरा, कोई आपको छोड़ के और कोई स्रोत नहीं है आपका, आप स्वतंत्र हो, पूर्ण हो। ये बात यहां कुंती महारानी कह रही है, नमस्से पुरुषम त्वाद्यम, त्वाद्यम त्व, आप कैसे? आप आद्यम, आप आदि हो, ओरिजिनल, ईश्वरम प्रकृते परम, और आप प्रकृति के परे हो, प्रकृति के परे हो मतलब आप प्रकृति के नहीं बने हो, आप अप्राकृत हो। भगवान कैसे है? प्राकृत और अप्राकृत, प्रकृति तो भगवान ने बनाई, भगवान स्वयं अप्राकृत है, प्रकृति परम। और भगवान जहां रहते हैं वैसे इस प्रकृति के, ब्रह्मांडों के परे, परस्तस्मात् तु भावो अन्य व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, कहा है भगवान ने अपने धाम का परिचय दिया जहां वे रहते हैं, कि व्यक्त और अव्यक्त, ये संसार कैसा है? कभी व्यक्त मतलब सृष्टि हुई, अव्यक्त मतलब प्रलय हुआ, लेकिन भगवान जहां रहते वैकुंठ धाम, उसका सृष्टि और उसका प्रलय इससे कोई संबंध नहीं है, वो शाश्वत धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान का धाम कैसा है? शाश्वत धाम है, वहां हम लौटेंगे तो फिर सदा के लिए हम भगवान के धाम में रह सकते हैं। ऐसे धाम को प्रकृति पर, प्रकृति के परे हो, आपका रूप भी वैसा है, आपका विग्रह भी प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति परम, भगवान का शरीर मिट्टी का नहीं है, हमारा शरीर कैसा है, मिट्टी का ढेला है, इसको जलाया जा सकता है मिट्टी से, इसको आग लगाई जा सकती है, इसको भिगाया जा सकता है, इसको काटा जा सकता है, लेकिन भगवान जो आत्मा है, परमात्मा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न क्लेदयन्त्यः पो न शोषयति मारुतः। आत्मा या परमात्मा का परिचय देते हुए भगवान गीता में कहते, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता। अरे अर्जुन तुम तो, मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, मुझे नहीं युद्ध करना है, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, मानो भगवान है हत्या नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा, तुम कह रहे करके दिखा दो, तुम कर ही नहीं सकते हत्या, अब तक शास्त्र न तो कोई बना है, न तो कोई बना सकता है भविष्य में जो आत्मा को काट सकता है, काट के दिखाओ, तुम तो इनको मिट्टी के पुतले समझ रहे हो, इसीलिए समझते हो हत्या नहीं करो, नहीं कर, लेकिन वो तो आत्मा है, उस आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती और जल इसको भिगा नहीं सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती, ऐसा है ये आत्मा, और ये आत्मा तो पूर्ण परमात्मा का एक अंश है, तो प्रकृति ही परम, प्रकृति से परे हैं भगवान, हम कुछ प्रकृति से लिप्त है, बद्ध जीव या प्रकृति में है, माया में है, लेकिन भगवान माया के अध्यक्ष है, मायाध्यक्षेनो, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप सर्वत्र होते हुए भी अंतर बहिर, अंदर आप रहते हो, बाहर भी आप हो, सर्वत्र आप हो, लेकिन अलक्ष्यम, आप दिखाई नहीं देते, जो देखना नहीं चाहते हैं, जो नास्तिक है, कैसे है लो, न अस्ति, क्या कहते हैं, न अस्ति, भगवान नहीं है, न अस्ति, अस्ति मतलब है और न मतलब नहीं, नास्तिक ऐसा कहने वाले, नास्तिक नास्तिक, लेकिन है तो भगवान, लेकिन जो नहीं है कहने वाले हैं उनको भी भगवान ही समझाते, हरे कृष्ण, हरे वो, हरे वो, हरे वो, हरे वो, हरे वो, गौर प्रेमानंदे, हरे हरे वो, प्रकृति के परे आपको पहुंचना होगा, माया भी एक प्रकृति है या निद्रा भी प्रकृति है, फिर आपके और हमारे बीच में पर्दा आ जाएगा, आप तो ओढ़ के, तो फिर ऐसा ऊपर से जाएगा सब, हम जो भी कह रहे हैं, तो जस थोड़ा कुछ यहां थोड़ी फिलॉसफी है, इस माता ने और कुछ लीला की बातें भी आगे कही है प्रार्थना में, तो आप सर्वत्र है, अंदर है, बाहर है, और कण कण में भगवान, वो कौन से भगवान, कण कण में जो भगवान है उनका नाम क्या, क्षीरोदक्षय विष्णु, वेरी गुड। और जो ब्रह्मांड में जो एक भगवान है, एक विष्णु है, उनका नाम गर्भदक्षय विष्णु, और दूसरे एक विष्णु है, वे एक ही है, वो महाविष्णु है, कारण दक्षय। एक ही विष्णु, महाविष्णु तो एक है, और गर्भदक्षय विष्णु कितने हैं, मतलब कितने कितने गर्भदक्षय विष्णु कितने हैं, और दूसरे शब्दों में कैसे कहोगे, एक ब्रह्मांड में एक, मतलब जितने ब्रह्मांड है उतने ही गर्भदक्षय विष्णु है। तो फिर आप मुझे कह सकते हो, आप गिन के आ जाओ, फिर हम कहेंगे कितने हैं, बता देंगे कितने हैं। तो आसान उत्तर तो है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है भाई, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो उतने अनंत कोटि गर्भदक्ष विष्णु भी है। तो एक महाविष्णु और गर्भदक्ष उतने हैं जितने ब्रह्मांड है, और क्षीरोदक्ष विष्णु कितने हैं, जितने जितने जीव है उतने तो हो गए क्षीरोदक्ष विष्णु, और परमाणु, उसका उत्तर है, ब्रह्मा ने उत्तर दिया, परमाणु चयांतरस्थम, परमाणु परमाणु चयांतरस्थम, जितने परमाणु है हमारे हृदय में भी है, सर्वस्य चा अहम हृदि सन्निविष्टः, और हमारे शरीर के भी जितने परमाणु है उसमें भी, और शरीर के बाहर भी जितने सारे एटम्स, उतने क्षीरोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो यही तो ये कुंती माता कह रहे, आप ऐसे होते हुए सर्वभूतानाम अंतर बहिर, सब भूतों के अंदर बाहर ऐसा होते हुए अलक्षम, अलक्षम क्यों, माया जवनिका छन्यम, आप स्वयं को ढक लेते हो, योग माया समावृत, नाहम प्रकाश सर्वशः योग माया समावृत, आप स्वयं को अपनी योग माया से ऐसे ढक लेते हो, ऐसे ढक लेते हो, बस अलक्षम, कोई देख नहीं पाता आपको, और आप अधोक्षज और अव्यय हो, अविनाशी हो, अव्यय मतलब आपका कोई आपका नाश नहीं होता, आप सदा के लिए रहते हो, और अधोक्षज हो मतलब इन इंद्रियों से आपको देखा नहीं जा सकता, हमारी इंद्रिया है, भगवान को देखना चाहते हो, कोई साधन है तो देखोगे, कैसे देखोगे, इन आंखों से तो देख नहीं सकते। अर्जुन को भी भगवान ने कहा, तुमको मैं अभी थोड़ा विश्वरूप दिखाता हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ा दूसरा चश्मा चाहिए तुमको, ये चश्मा पहनो फिर दिखाई दे, इससे तो दिखाई नहीं देते। सेवन मुखे ही जीव भादो, फिर इन आंखों की थोड़ा ऑपरेशन करना होगा। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम एन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरुजन क्या करेंगे, आचार्यगण जब ऑपरेशन करके हमारे उन्मिलितम आंखों को खोल देंगे, अंतः चक्षु को खोलेंगे, तो फिर दिखाए देंगे भगवान। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ती। प्रभु के कथा के श्रवण मात्र से, नाम के उच्चारण मात्र से, स्मरण मात्र से जिनकी आंखों से आंसू, प्रेम के आंसू, आनंद अश्रु टपकने लगते हैं, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति सदैव हृदयेषु विलोकयन्ती, अपने हृदय प्रांगण में या सर्वत्र उनको देख सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति, उनको सर्वत्र क्या होती है, अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। ना देखे तार मूर्ति, सावर जंगम देखी, सावर जंगम देखी, ना देखी तार मूर्ति। जैसे सुखदेव गोस्वामी जा रहे हैं और ऐसे जड़ भर जा रहे हैं, और ऐसे कोई परमहंस पहुंचे हुए महात्मा साक्षात्कारी पुरुष जब जा रहे हैं, कहीं आना जाना उनका परिभ्रमण चलता रहता है, तो वैसे वे संसार के जो वस्तु सामने हैं उनको देखते भी नहीं हो। स्थावर जंगम देखी ना देखी तार मूर्ति, कोई स्थावर, संसार में दो प्रकार की वस्तुएं होती है, एक का नाम है स्थावर, स्थावर मतलब जो स्थित है, जैसे ये घर है, और भी कोई संपत्ति के भी दो प्रकार, स्थावर और जंगम मालमत्ता कहते हैं। स्थावर मतलब स्थित, इमूवेबल प्रॉपर्टी, और दूसरी कैसी, जंगम, अपने व्हीकल्स है और कोई सामान है, चलायमान जो होते हैं। तो महात्मा गण जो शुद्ध अंतःचक्षु से देखने वाले जो महात्मा है, वे जब कहीं जा आ जा रहे हैं तो बाहर की वस्तु को देखते ही नहीं है। क्या किस लिए देखेंगे, कोई कारण ही नहीं। सर्वत्र है इष्ट देव रस, उनको तो अपने इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। देख भी लिया, सामने गाड़ी है, चलो बस थोड़ा मुड़ के थोड़ा ऐसे जाएंगे, ये नहीं कि गाड़ी है तो फिर रुक के पूरा देख लेंगे, उस गाड़ी को समझेंगे, देखने की चीज है तो अब बार बार देखो, उस कार को देखेंगे। देखने देखने में अंतर है। सुखदेव गोस्वामी ने कार देखी, ठीक है तो कार में टकराना तो नहीं है, थोड़ा बगल से जाएंगे, थोड़ा डाइवर्जन लेके जाएंगे। और दूसरा कोई है तो रुकेगा, प्रदक्षिणा भी कर सकता है उस कार की, इधर से देख रहा है, उस एंगल से देख रहा है, उस एंगल से देख रहा है, उसका दरवाजा खोल के देख रहा है, उसको चूम रहा है। कुछ लोग तो कार का चुंबन कर सकते हैं, कितनी अच्छी कार, अपने मोबाइल का, मोबाइल से उसका फोटो खींच सकता है, कौन से ब्रांड की, कौन सी कंपनी की है, कौन सा मॉडल है, कितना सारा देख लिया। देखो सुखदेव गोस्वामी ने कार, और ठीक है कार है, बस कार है, किस कंपनी की है, किस ब्रांड, कौन सा मॉडल, क्या प्राइस, क्या कौन सा कलर, नॉट इंटरेस्टेड। सर्वत्र है इष्ट देव, बस अपने इष्ट देव में वे तल्लीन है, उन्हीं का दर्शन कर रहे हैं अंतःचक्षु से। बाहर के मिट्टी मिट्टी में क्या पड़ा है, ये सारी संस्कृत प्रकृति तो मिट्टी की बनी हुई है। तो भगवान अधोक्ष जा है, ऐसे साधारण चर्म चक्षु से उनको देखा नहीं जा सकता, तो साधना भक्ति से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मुख्य साधना है कलयुग में, भगवत प्राप्ति का ये मुख्य साधन है नाम जप। भगवान का प्राप्ति का दर्शन के लिए साधन है, साधु संग साधन है। नारद मुनि ने और क्या किया था? नारद मुनि को दर्शन हुआ कि नहीं? कल हमने देखा सुना, नारद मुनि को दर्शन हुआ। तो जो भी नारद मुनि जैसे कदम उठाएगा, वही उन्हीं साधनों को अपनाएगा, तो उसको भी दर्शन होगा। तो उन्हें सत्संग किया, संतों की सेवा की, प्रसाद ग्रहण किया, बस इतना विरक्त अनासक्त बने हुए। इतनी प्यारी मम्मी मां नहीं रही तो भगवान किसी को व्यवस्था समझ के गए, एकांत में गए और भगवान का ध्यान करने लगे। जैसे सुना था, जैसे वर्णन भगवान के सौंदर्य का, लीला का, वो चिंतन करने लगे तो भगवान प्रकट हो। यथा श्रुतम का, यथा जैसे सुना था, अब तो हमने नहीं देखा होगा, लेकिन जो जिन्होंने देखा है वो वर्णन हम पढ़ के उसको स्वीकार करेंगे तो हम भी शुद्ध जब होंगे तो भगवान का दर्शन करेंगे, तो वो दर्शन वैसा ही होगा जैसे हमने वर्णन सुना था या वर्णन पढ़ा था। नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि आंखों देखा वर्णन तो किसी ने लिखा है, श्रील व्यासदेव इत्यादि, नारद मुनि, ब्रह्मा, ये सब वर्णन कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, ठीक है मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं, मेरा संबंध उनसे है जिन्होंने देखा है भगवान को, तो वो तो झूठ नहीं बोलते, इतना मेरा विश्वास है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य। तो चेतना की शुद्धि और उसमें ऐक्य, गुरु मुख पद्म वाक्य, कृष्ण प्राप्ति हो जहा होते, और कृष्ण प्राप्ति हो। आचार्यों के श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के अध्ययन से, श्रवण से, न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। हा मैं तो मूढ़ हूं कुंती माता के, मैं तो अनाड़ी या अबला स्त्री हूं, मैं कैसे देख सकती समझ सकती आपके आपको, और वो भी आप। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम। और आपको समझने में ये भी समस्या है कि नटो नाट्य धरो यथा। अच्छा, रात्रि के समय हम लोग सायंकाल या नाटक भी हो रहे हैं, जब तक परिचय नहीं होता, कुछ कलाकार इतने उस पात्र के साथ इतने समरस हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं भाव से, और फिर उनका ऐसा मेकअप, ऐसा वस्त्र पहनते हैं, तो कौन पहचान सकता है, ऐसे धुंधकारी बने हुए। जब तक परिचय नहीं हुआ तब तक कौन समझाता कि ये झांसी के महात्मा ये भूमिका ऐसी कर रहे हैं। और यहां के नटों में कुछ दोष भी हो सकता है, कुछ लीक आउट हो सकता है उनका मूल स्वभाव, लेकिन कुंती महारानी आप जब कोई ऐसी भूमिका निभाते हो नटो नाट्य धरो यथा। आपके बहुनी में व्यतीत तो भगवान के कई रूप है, कई कई सारे रूप हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, आपके अनंत रूप है। और नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। राम आदि कई सारे आपके रूप धारण करते रहते आप। कभी आप मछली बन जाते हो, कभी क्या कच्छप बन जाते हो आप, कभी नरसिंह बन जाते हैं, तो कभी सूकर रूप और कठिन है। केशव धृत सूकर रूप जय जगदीश हरे। आप तो बन जाते हो सूकर, लेकिन रहते कौन आप, जय जगदीश हरे ही रह जाते आप, तो कठिन है पहचानना आपको। नटो नाट्य धरो यथा तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम। लेकिन जो परमहंस है और जो मुनिगण है, जो अमल है, उनके मन में कोई मन मल नहीं है। कई बार नदियों का जो पवित्र स्वच्छ जल है, वृंदावन के कुंडों का जल, जमुना जल, या चित्रकूट में आपने जो नदी देखी मंदाकिनी, उसका जल, स्फटिक शिला की ओर जो जल, हम कुछ इस साल तो अभागा मैं नहीं जा सका, कुछ वर्ष पूर्व हम गए थे तो उस जल को देखा जो ऊपर बस्ती से गांव से दूर है, वन की ओर, जंगल जहां पहाड़ से गंगा नदी बहती है मंदाकिनी, तो वहां कितना स्वच्छ जल। इस वक्त भी देखा होगा तो उसमें मछलियां स्वच्छंद विहार कर रही, गहरे पानी में मछली है, झुंड के झुंड तैर रहे हैं, तो उनको देख सकते हैं उस पानी में। तो वो जो पानी है उसकी तुलना कई बार की जाती है अमल आत्मनाम, महात्माओं के मन जैसे स्वच्छ होते हैं, निर्मल होते हैं। महात्माओं के मन जैसे निर्मल होते हैं, वैसे ही कई सारे झरने या कई सारे तालाब या कुंड या नदियों के जल, स्वच्छ मन उनका, उनका दर्पण, दर्पण मार्जनम, साधना कर करके साधना के साथ वो घिसते रहते, चमकाते रहते अपने मन को। और यहां कोई दोष है, यहां कुछ क्रोध आ गया, फिर पुनः सुधार करेंगे, वो थोड़ा काम का लेश गंध, तो रात दिन लगे रहते हैं। तो ये कहते हुए आपको ये नहीं समझना चाहिए, ये स्वच्छ करने का, मन स्वच्छ करने का कार्य शायद महात्माओं का ही है और औरों का नहीं है, हर एक को ऐसा करना होगा। क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं है, वो दर्पण को स्वच्छ नहीं करेंगे, तब तक हम स्वयं को नहीं देख पाएंगे, भगवान को भी नहीं देख पाएंगे। तो ये हर मनुष्य को, स्त्री पुरुष को, नर नारी को, अबाल वृद्ध को, ये अपना जीवन का मुख्य कार्य तो यही है, अपनी चेतना को शुद्ध करना, अंतकरण को शुद्ध करना। तो कुंती माता कह रही, जो परमहंस है मुनि, मुनि नाम अमलात्मा नाम है, उनके लिए तो नटो नाट्य धरो यथा, वो तो समझ सकते हैं आपने अब कौन सा भूमिका आपने निभाई है, ये कौन सी लीला है, ये कौन सा रूप है, कौन सा अवतार है, उनसे आप छिपे नहीं हो। भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महि स्त्रियः। तो आप ये अलग अलग लीला भूमिका निभाते हो। इसका उद्देश्य होता है भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग की स्थापना, धर्म की स्थापना, इस उद्देश्य से आप अलग अलग रूप धारण करते हो। लेकिन हम, मैं जो या मेरी जैसी स्त्री कैसे समझ सकती है आपको? वो तो समझ रही है, समझ रही तो भी वो कह रही है कैसे समझ सकती है। कुंती महारानी के प्रार्थना विचार बड़े बड़े ऋषि मुनि तत्वज्ञ बैठ के समझने का प्रयास करते हैं। कुंती को जो समझ में आया उसके साक्षात्कार, उसका अध्ययन करते हैं महामुनि ज्ञानी, तो भी अपनी नम्रता है कि मैं कैसे समझ सकती हूं, कथम पश्येम हि स्त्रियः, मैं स्त्री कैसे समझ सकती हूं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये प्रार्थना आपको सुनने में आती है ना, बारंबार आप सुनते रहते हो। ये प्रार्थना किसकी है आज आपको समझ में आ, कुंती ने ये ऐसी प्रार्थना की है। तो ऐसा जब कह रही है तो क्या कुंती को भगवान नहीं समझ में आ रहा है? कितना स्पष्ट कह रही है, आप कौन हो? कृष्णाय, आप कृष्ण हो। कृष्णाय वासुदेवाय, आप कृष्ण कैसे हो? आप वसुदेव नंदन हो, इसीलिए आपका नाम वासुदेव है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, आप देवकी नंदन हो। नंद गोप कुमाराय, और फिर रातों रात आपको पहुंचा दिया गोकुल में, तो जिन्होंने आपकी आपको दत्तक लिया, मराठी में कहते हैं, आपको स्वीकारा अपने पुत्र के रूप में, गोद में लिया, तो वे नंद बाबा नंद गोप कुमार आए, आप बने उनके कुमार, नंद नंदन भी आप बने। गोविंदाय नमो नमः, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। और कितने बार मैं नमस्कार करती हूं? नमो नमः मतलब नमः 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 नमः, मेरे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए हे प्रभु। नमो नमः जहां लिखा होता, नमो नमः मतलब नमः 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 नमः, मेरा नमस्कार, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मन में, मन झुका हुआ है शरणागत अवस्था में, तो नमस्कार चल रहा है मन से। गोविंदाय नमो नमः, तो गोविंद मतलब गाय को आप प्रसन्न करते हो, गो मतलब गो के तीन अर्थ तो और भी हो सकते, तीन तो बताए हैं जिसका हम उपयोग करते हैं। गो मतलब गाय है, और गो मतलब इंद्रिया है, और गो मतलब भूमि भी है, जमीन भी है। तो गोविंदाय आप प्रसन्न करते हो गायों को, इंद्रियों को, और पृथ्वी को, जमीन को भी। गोविंदाय नमो नमः, ऐसे गोविंद को मेरा नमस्कार। गाय को प्रसन्न करते भगवान, अपनी इंद्रियों को, इंद्रियता प्रसन्न होगी जब हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करेंगे भगवान की सेवा में, फिर हम लोग योगी हो गए। इंद्रिया किसकी? हम लोग अपनी इंद्रिया कहते, लेकिन वैसे भगवान का एक नाम है ऋषिकेश, आपने सुना ऋषिकेश भगवान? तो ऋषिकेश में दो शब्द है, एक है ऋषिक और दूसरा है ईश। तो ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के मालिक, हम समझते इंद्रिय हमारी है, नहीं नहीं, इन इंद्रियों के स्वामी भगवान है। इंद्रिय हमारे पास है, हमने उधार ली हुई है, ये हमको दी गई है उसका उपयोग करने के लिए। लेकिन ऋषिकेश, इन ऋषिक इंद्रिया, इनके ईश स्वामी मालिक तो ऋषिकेश है, इसलिए कहा है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते, भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति की, भक्ति योग की स्थापना करने आप प्रकट होते हो तो भक्ति क्या है लिखिए, भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा। भक्ति तो हम लोग कदम कदम पर भक्ति भक्ति हम लोग सुनते रहते हैं, तो भक्ति की परिभाषा कही है संस्कृत में, अगर लिखना है तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। उच्यते मतलब कहा जाता है, भक्तिरुच्यते मतलब भक्ति कही जाती है, ये वाक्य हो गया भक्तिरुच्यते। तो किसको भक्ति कहते हैं, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, हम जब हमारे पास जो इंद्रिया है उन इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि हमारे इंद्रियों के मालिक तो भगवान है, तो उस मालिक के सेवा में जब इंद्रियों का उपयोग होगा, हमारी इंद्रिया उस मालिक की सेवा करेगी, तो उसी सेवा का ही नाम है भक्ति हो गई। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। और फिर इसको अपनी इंद्रिया समझेंगे, भगवान का जो स्वामित्व है, अधिकार है, मालकी हक है, उसको भूल के इन इंद्रियों को अपनी इंद्रिया समझ के अपने ही तर्पण के लिए, अपने ही प्रसन्नता के लिए, मनोरंजन या इंद्रिय तृप्ति के लिए इन इंद्रियों को उपयोग करेंगे तो हम लोग, यही तो माया है और यही है, ये भोग हो गया। पहला जो कृत्य था वो त्याग था, त्याग या भक्ति थी, पहला है त्याग, और जब इंद्रियों का उपयोग हम अपने सेवा में करेंगे तो वो है क्या है, भोग है, भोग। और फिर भोग से होते हैं रोग, भोग से क्या होता है, रोग, और भव रोग, फिर हम रोगी बन जाते हैं। तो एक होता है रोगी और दूसरा होता है योगी, भोगी होता है रोगी और त्यागी होता है योगी, भक्ति योगी, तो दो प्रकार हो गए। तो एक को कहा ये कृष्ण भावना हुई, दूसरी माया भावना हुई, माया हुई, एक कृष्ण है दूसरी माया, तीसरा है नहीं, इस संसार में केवल दो दो बातें हैं, एक है कृष्ण और दूसरी है माया, तीसरा है नहीं, एक तो रात है नहीं तो दिन है, कुछ स्त्रियां है कुछ पुरुष है, कुछ काले है कुछ गोरे, कुछ श्रीमान है कुछ गरीब है, ये जैसा द्वंद्व है। तो इसी श्रृंखला में कहा जा सकता है, एक तो है कृष्ण और दूसरी है माया, तीसरा कोई है नहीं, या तो हम लोग कृष्ण में है, कृष्ण कॉन्शियस है, कृष्ण भावना भावित है, या तो माया में भ्रम में फंसे हुए, माया भ्रमित है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है हम कौन है, कहां से आए, क्या जाना कहां है। तो भक्ति योग विधानार्थम, भक्ति योग की स्थापना के लिए आप प्रकट होते हो, आप कृष्ण हो, गोविंदाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोप कुमार आय, ऐसे कहने के उपरांत अब भगवान का दर्शन तो कर ही रही, सामने सामने प्रभु खड़े हैं, तो अलग अलग अंगों को देखती हुई थोड़ा सा वर्णन करती है, नमः, मेरा नमस्कार आपको, पंकज नाभाय, आपको मेरा नमस्कार। कैसे आप? पंकज नाभ, पद्मनाभ, आपकी नाभि जो पद्म जैसी है, या आपके नाभि से ही वो कमल का फूल, ब्रह्मा जिस कमल के फूल पर जन्मे, तो वे आप पंकज नाभाय, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। फिर आगे कहती है, पुनः मेरा नमस्कार, आप किसको नमस्कार? पंकज मालिने, कमल के फूलों की माला पहने हुए आप, उस दिन कमल के फूलों की माला पहनी होगी। कदा द्रक्षामि नंदस्य बालकम नीपमालकम, रूप गोस्वामी कहते हैं, उनका और ध्यान है, कब दर्शन कर पाऊंगा नंद के बालक का जिन्होंने नीपमालकम, नीपमालकम मतलब कदम के फूलों की माला पहने हुए आप श्री कृष्ण, मुझे कब दर्शन होगा। तो अलग अलग माला, तो भगवान कभी वनमाला पहनते हैं, वनमाला मतलब वन कैसे फूल तोड़ दिए और बनाई माला और पहनाई, तो वनमाली हो गए। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? वनमाली, जो कहते हैं वनमाली मतलब वन की माला पहने हुए। तो भागवत में गोपिया कहते, आप तो वैजयंती माला पहनते हो, वैजयंती च मालाम, मतलब पांच प्रकार के फूल, पांच अलग अलग रंग वाले फूल, उनकी बना दो एक विशेष माला, लंबी भी हो जो माला, वैसी माला जब भगवान पहनते हैं तो उस माला का नाम है वैजयंती माला। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार की माला भगवान धारण करते हैं, और कभी ऐसे गले में लटकाते हैं माला, तो कभी कभी ऐसी माला ऐसे भी पहनते हैं भगवान माला, ऐसा भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन आता है, कभी कभी माला उनके ऐसी हो जाती है, तो कभी कभी फिर बालों में भी उनके फूल की माला पहनी होती है, जैसे नारद मुनि चूड़ा और फिर माला कजनेत्राय। तो भगवान अलग अलग जैसे माला पहनते हैं, तो यह तो नहीं कहा उन्होंने, कुंती माता ने, भगवान अलग अलग प्रकार की मुरली भी बजाते हैं, मुरली के भी तीन प्रकार बताए भगवान। एक तो मुरली, उसका नाम ही मुरली है, तो फिर मुरलीधर हो गए। फिर दूसरे प्रकार की फ्लूट बजाते हैं, उसका उसको कहते बंसी, बंसी बजाते हैं, तो बंसीधर हो गए, मुरलीधर, बंसीधर और वेणुधर, वेणुम कनंतम अरविंद दलाय। तो तीन प्रकार के फ्लूट्स बजाते भगवान। तो वेणु को बजा तो वेणुधर हो गए, फिर बंसी को बजा बंसीधर हो गए, और मुरली को बजा तो मुरलीधर हो गए। तो वो फ्लूट उसकी लंबाई कितनी है? बंसी छोटी होती है, तो लंबी है या छोटी है, उसमें कितने छिद्र है, होल्स कितने हैं, उस पर भी उसका नाम बदलता है, और किस प्रसंग में, किस लीला के समय किसका उपयोग, ये भी निश्चित है। रास लीला में कौन सी फ्लूट बजाएंगे, और गायों को बुलाने के लिए कौन सी मुरली, और फिर उसमें भी कई सारे, वेणो रंध्रान अधर सुधया पूरयन, भगवान अपने अधर, अधर सुधया, नीचे का जो ओठ है वहां पर बिठाते हैं मुरली को या बंसी को या वेणु को, और फिर अधर सुधया, अधर का जो सुधा है, अमृत है, उसको भर देते हैं और फिर उसको छिड़का देते हैं। से वेणु के नाद को, बंसी के नाद को ऐसे दूर दूर तक उसको पहुंचा देते हैं। और जिस व्यक्ति के नाम से वो नाद को उन्होंने पुकारा, कहा या भेजा, वही व्यक्ति उसको सुन सकता है, कोई व्यक्ति नहीं सुन सकता। घर में सारे बैठे हैं, रास क्रीड़ा का समय है, तो भगवान जो बंसी का नाद करेंगे वो केवल गोपियों को सुनाई देगा, बगल में बैठे हैं उनको कुछ सुनाई नहीं देगा। तो केवल गोपियां उठेगी और दौड़ने आए कि हुआ क्या, और क्या होना, मैंने तो मुरली को सुना, मानो वो वायरलेस उनका मोबाइल आ गया, भगवान ने मोबाइल किया और नहीं सुन रहे। और भगवान अपने मुरली से गायों के नाम पुकारते हैं। एक समय गाय सब आग में फंसी थी, आग के मध्य में, और भगवान के मित्र भी, तो उन्होंने विशेष प्रार्थना की, रक्षा करो, पाही माम त्राही माम। तो भगवान ने कहा, मां भैष्ट, डरना नहीं, डरो नहीं। निमीलयत लोचनानी, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। सभी ने आंखें बंद की, भगवान ने जैसे कहा बालकों को, मित्रों को, तो सभी ने आंखें बंद की, डर कुछ समय के लिए छोड़ दिया, निर्भय बने। तो सभी ने जब आंखें बंद की तो भगवान ने क्या किया, जो आग थी वहां, उस आग को भगवान पी लिए, अग्निपान किया उन्होंने। उससे क्या उनका शरीर जल गया, ओठ, मूछ, मूछ तो होती नहीं भगवान, क्योंकि 16 वर्ष का है, इसीलिए उनके दाढ़ी नहीं है, सफेद होने का तो नाम ही नहीं है। कुछ धर्म कहते भगवान दाढ़ी वाले हैं, सफेद दाढ़ी है, उनको ज्ञान नहीं भगवान का, भगवान बूढ़े नहीं होते। अद्यम पुराण पुरुषम नवयवनम च, अद्यम पुराण पुरुषम त्वाम अद्यम पुरुषम, ऐसे होते हुए भी वे कभी बूढ़े नहीं होते, उनकी दाढ़ी नहीं हो, बाल नहीं पकते उनके, और भी बाल थे लेकिन सिर पर, वो जले क्या, नहीं जले, उन्होंने आग पी, भगवान ने पूरी आग को पी लिया, तो क्यों नहीं जले, क्यों नहीं जले, किस सिद्धांत से आप कह सकते हैं उनका वो जले नहीं होंगे? नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, दहति दहन, दहन है ना, दहन न दहति पावक, पावक का मतलब अग्नि, अग्नि परमात्मा को, आत्मा को जला नहीं सकती इस सिद्धांत से, क्योंकि वो प्रकृति, शरीर प्राकृतिक नहीं है, प्रकृति परम, आप प्रकृति के ऊपर हो। तो जब अग्नि जब नहीं रही तो भगवान ने कहा, ठीक है, ओपन योर आइज, बच्चों आंखें खोल दो। तो सभी ने आंखें खोल दी तो देखते हैं तो कहा, अग्नि है नहीं, सब शांत हो गई, सबको अचरज हुआ और सभी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो पुकारने लगे, जय हो जय हो। अब कृष्ण थोड़ा देखना चाहते थे कि गाय वैसे कुछ समय से एक बन से दूसरे बन से वहां पहुंची थी जहां वन में आग लगी, तो सभी गाय है कि नहीं देखना चाहते थे भगवान। तो भगवान ने क्या किया, भगवान मुरली से गायों के नाम पुकारने लगे। कितनी गाय उनके? 9 लाख गाय। तो सारे नाम भगवान को पता है, 9 लाख गायों के कम से कम 9 लाख तो नाम है, किसी किसी गाय के 2 भी नाम हो सकते हैं। आपके भी कई बार होते हैं, आपको ये विशेषता है तो उससे नाम बन जाते हैं, आपके स्वभाव से, आपके शरीर के आकार से कुछ नाम एडिशनल नाम हो जाते हैं। तो हुआ तो भगवान ने एक एक करके नाम पुकार रहे, तो जो गाय अपना नाम सुन लेती थी बड़ी प्रसन्न होती थी, आहा मेरा नाम ही पुकारा। लेकिन जिस गाय का अभी तक नाम नहीं पुकारा थे वो बड़ी दुखी, अरे मेरा नाम तो नहीं पुकार रहा। तो फिर उनका नाम जब पुकारा जाता आ बड़ी प्रसन्न हो जाती। तो धीरे धीरे भगवान ने 9 लाख गायों के यस सर आई एम हियर। तो भगवान क्या करते हैं, टिक करते जाए, ओके सब गाय है यहां। रोल कॉल होता है ना, जब स्कूल खुलता है तो प्रेजेंट यस सर, शिंदे यस, पाटिल यस यस यस, शर्मा यस। तो सभी गाय, उनका रोल कॉल हुआ और सब गाय थे। तो मुख से नहीं बोल रहे थे भगवान, मुरली से नाम भी पुकार रहे थे। तो हो सकता है कि भगवान एक ही साथ भी सभी गायों के नाम पुकार सकते हैं। हम लोग तो एक ही नाम एक समय तो एक ही नाम कह सकते हैं, एक ही शब्द हमारे मुख से निकल सकता है, लेकिन भगवान एक ही साथ 9 लाख नाम कह सकते हैं। ऐसी क्षमता भगवान में है। ऐसा करने के लिए भगवान स्वयं को 9 लाख रूपों में अपना विस्तार भी कर सकते हैं, फिर एक एक रूप ने एक एक नाम कह दिया एक एक गाय का। ऐसे अद्भुत वंडरफुल है कृष्ण, श्री कृष्ण। नमः पंकज नेत्राय, और आपके नेत्र कैसे हैं? लोटस। कल हम लोग बात कर रहे थे 7 भगवान के अंग कैसे हैं, लोटस लाइक, कमल की तुलना इनकी इनके साथ हुई है। नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे, और आपके चरण कैसे हैं, चरण कमल है। इतना ही नहीं, वैसे भगवान के जो तलवे हैं उसमें कमल का चित्र है, कमल का चिन्ह है, और केवल कमल का ही चिन्ह नहीं और कई सारे चिन्ह हैं, उसकी भी संख्या कुछ 18 है। फिर दाहिने चरण में कितने चिन्ह हैं, फिर बाएं चरण में कितने चिन्ह हैं, कौन कौन से हैं, और उस हर चिन्ह का कोई महात्म्य है, उस हर चिन्ह का अपने भक्तों के लिए कुछ उपयोग है। जैसे हमने प्रणाम किया भगवान को तो भगवान प्रणत क्लेश नाशाय, जो भी प्रणत जो भी नतमस्तक होता है भगवान के समक्ष, भगवान क्या करते हैं, क्लेश नाशाय, उसका क्लेश का नाश करते हैं। तो होता क्या है, जब प्रणाम किया हमने भगवान के चरण कमलों को तो वहां एक गदा है, गदा, वो गदा तैयार हो जाती है और आपका जो भी क्लेश का कारण है उसको ऐसी पिटाई कर देगी वो गदा, या वहां सुदर्शन चक्र भी है तो उसका पीछा करेगा वो सुदर्शन जो आपका पीछा कर रहा है। तो वो चिन्ह केवल ऐसे पेंटिंग करके ऐसे चिपक के रहते हैं ऐसी बात नहीं है, वो तैयार रहते हैं। और वहां एक छत्र भी है, छत्र समझते ना, सिंहासन के ऊपर छत्र होता है, कभी राजा महाराजा जा रहे हैं तो ऊपर एक छाता ऐसा पकड़ा जाता है। तो भगवान के तलवे में चरण के चिन्हों में एक छत्र भी है, मतलब जो भगवान के चरणों का आश्रय लेगा उसका गौरव बढ़ेगा। जिसके ऊपर छाता है मतलब गौरव है, गौरव का चिन्ह है, उनका सत्कार हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्र तो सत्कार होगा जो भगवान की शरण में आएगा, उसकी रक्षा भी होगी। ये शंख है, उसका कमल का फूल है, तो शरण लेने से वो शीतलता कमल की उसका अनुभव करेंगे शरणागत भक्त। नमस्ते पंकजांघ्रये, तो यह तो पंकजांघ्री भगवान का एक नाम क्या है, पंकजांघ्री, तो पंकजांघ्रये पंकजांघ्री का पंकजांघ्रय हो गया। ये होता है, ये नमः जोड़ने से चतुर्थी बन जाती है, अलग अलग विभक्तियां है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक, और आठवा है संबोधन, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी। तो ये नमः होने से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, तो पंकजांघ्री का पंकजांघ्रये हो गया। यह हरि का हरये होता है, हरि को मेरा नमस्कार, हरये नमः, हरये नमः हरि को नमस्कार, शिवाय नमः रामाय नमः राम को नमस्कार, ये चतुर्थी के शब्द है रामाय नमः। तो देव्यै ललिता देव्यै नमः यह लिखा है, ललिता का मंदिर है तो वह ललिता देव्यै, तो देवी का देव्यै हो जाता है चतुर्थी में, क्योंकि नमस्कार है। वृंदायै, तो ये वृंदायै क्या भानगढ़ है, भानगढ़ है, तो वृंदायै, वृंदा का चतुर्थी हो गया वृंदायै, फिर राधा का क्या होगा, राधायै होगा, सीता का सीतायै होगा। अधिकतर जो स्त्रीलिंग शब्द है वो आकारांत होते हैं, आकारांत या कुछ ईकारांत भी होते हैं, अधिकतर आकारांत ईकारांत होते हैं। तो हजारों शब्द आपको मिलेंगे आकारांत, जहां तक नाम है तो उसको नमस्कार कहना है तो फिर राधायै सीतायै ललितायै। और फिर देव्यै अलग है, देवी है वह, देवी का देव्यै हो गया। वृंदायै तुलसी देव्यै, तुलसी, तुलसी क्या देव्यै, तुलसी देव्यै, प्रियायै, प्रिया है ना, प्रिया, प्रियायै हो गया, प्रियायै, प्रिया का प्रियायै, राधा का राधायै, प्रियायै केशवश च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै, सत्यवती का सत्यवत्यै हो गए। यानी कि वृंदाय तुलसी देवाय, ये गलत हुआ, हम लोग सरल कर देते वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय, ये सब गलत हमने कहा, वैसा लिखा नहीं है, ऐसा मंत्र मंत्र के उच्चारण में पूरा दोष। रामाय ठीक है लेकिन सीताय नहीं कहेंगे, सीता यही कहेंगे, रामाय ठीक है, राम रामाय, सीता यही कहना होगा, सीता यही राधा यही। तो पंकजांग्र ये, इससे थोड़ी मदद होगी आपको, पद्मनाभ है ना, पद्मनाभ, तो पद्मनाभ को नमस्कार तो कैसे लिखोगे आप, क्या कहोगे, पद्मनाभाय नमः। देखिए यहां पद्मनाभाय है, थोड़ा सा समझ में आने से फिर आपको स्पष्ट होगा ये पद्मनाभाय क्यों, पद्मनाभ कहना चाहिए था, पद्मनाभाय क्यों है। और नेत्र पंकज नेत्र, आप कैसे हो, हे पंकज नेत्र, ये संबोधन हुआ, आप पंकज नेत्र हो, आप पंकज नेत्र को मेरा नमस्कार, फिर क्या कहोगे, पंकज नेत्राय कहोगे, पंकज नेत्राय। ओके, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणा। तो वा जैसे तुमने हे कृष्ण हे गोविंद हे वासुदेव ऋषिकेन खलेन देवकी कंसेन, तुमने कंस का वध करके वसुदेव देवकी की रक्षा की, उसी प्रकार तुमने मेरे और मेरे सहात्मजा अहम च सहात्मजा हे विभो हे विभु हे शक्तिमान श्री कृष्ण विमोचिता अहम, आपने हमारी रक्षा की, मेरी रक्षा की, मेरे पुत्रों की रक्षा की, त्वयैव नाथेन, नाथेन मतलब नाथेन नाथ ने जैसे रामेन ये तृतीया हो गई, आप नाथ ने मुहुर विपदगणात कई सारे संकटों से आपने हमारी भी रक्षा की, कंस का वध किया, आपने देवकी की रक्षा की, तो आपने पक्षपात नहीं किया, उनकी भी रक्षा की तो हमारी भी आपने रक्षा की। ये नहीं केवल अपनी मां को समझ के आपने केवल देवकी की रक्षा की, देवकी को ही मुक्त किया आपने संकट से, कंस के चंगुल से, कारागार से, आपने मेरी और मेरे पुत्रों की पुनः पुनः मुहुर मुहुर विपद गणा आपने मुक्ति की है, रक्षा की है। और कुंती माता ऐसी प्रार्थना केवल कुंती ने ही की होगी, अभी जो उनके वचन है, आपने ऐसी कभी, निश्चित ही आप में से किसी ने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की होगी, और वो प्रार्थना है, कुंती माता कहती है, विपदः सन्तु नाशश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। ये 25वां श्लोक है, स्कंद एक अध्याय आठ और श्लोक संख्या 25 बड़े ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है। प्रभुपाद बारंबार इस प्रार्थना पर व्याख्या किया करते थे। तो इसमें कुंती माता कह रही है, विपदः संतु न शश्वत, हे प्रभु आने दो विपद, संकट आने दो, संकट भेजा करो, आने दो संकट, कोई शिकायत नहीं हमारी। मेरी प्रार्थना है संकट आने दो। आपने कभी प्रार्थना ऐसी की है? आप तो वह बनारस में जाके संकट मोचन हनुमान जी कहां है, हर धाम में ऐसा कोई मोचन का नाम सुनते ही हम लोग वहां घुस जाते हैं। कहीं संकट मोचन हनुमान तो संकट मोचन और भी कोई बन जाते हैं। तो संकट मोचन, लेकिन कुंती माता के नहीं, नहीं भेज दो, आने दो, विपदा संतुते शश्वत, बारंबार आने दो संकट। बड़ी युक्ति, बड़ी कुशल है ये कुंती माता। क्या तात्पर्य है, क्या भाव है ऐसी प्रार्थना करने का या संकट भेजो कहने का? वो आगे कहती है, भवतो दर्शनम यत्स्यात्, जब भी संकट है तो फिर हम क्या करेगी, हम आपकी भक्त है, आपकी ओर दौड़ के आएगी। जो छोटे बालक के लिए कोई संकट है तो बालक क्या करता है, मम्मी 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 को ढूंढने जाता है, मम्मी की ओर दौड़ता है। तो जब जब संकट आएगा तो हम क्या करेंगे, भवतो दर्शनम यत्स्यात्, हम आपके लिए, आपकी ओर आएगी दर्शन के लिए। और इतना ही नहीं, लाभ केवल आपका दर्शन ही नहीं होगा, जब जब संकट आएंगे हम आपको मिलने आएंगे। और उससे होगा क्या, अपुनर्भव दर्शनम, और हम दर्शन करेंगी तो पुनः नहीं होगा इस जगत का दर्शन हमें, मतलब पुनः जन्म नहीं होगा हमारा। आपका दर्शन कर करके, दर्शन कर करके हम आपकी भक्त बन जाएगी, शुद्ध बन जाएगी, पवित्र बन जाएगी, आपके शरण में आ जाएगी। तो फिर पुनर्जन्म न विद्यते, पुनः जन्म नहीं होगा। अपुनर्भव दर्शनम, इस जगत का पुनः हमें दर्शन नहीं करना पड़ेगा, हम जन्म ही नहीं लगी तो कहां से दर्शन करेगी। देखो कैसा गणित है इस कुंती माता का, आने दो संकट, हम आपकी ओर आएगी, और कोई सहारा है ही नहीं हमारा। हम तुरंत फोन जोड़ देगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पुलिस चौकी में फोन नहीं करेगी, हम कहां फोन होगा, सीधे आपसे संपर्क करेगी और आप अपने सेक्रेटरी को नहीं कहे आज तुम फोन उठाओ, नहीं, आप फोन स्वयं फोन उठा दे। आप जो कोई भक्त आपका फोन करता है आपको, तो आप स्वयं फोन उठाते हो, सदैव तत्पर रहते आप भक्तों की सहायता के लिए। तो और भी सोचा था कि प्रार्थना पूरी करने का, लेकिन हम ऐसे थोड़ा वो महाभारत सुनाया आपको, सातवें अध्याय से 19 तक का थोड़ा संक्षिप्त वर्णन सुनाया, जो आवश्यक था तो उससे उसमें थोड़ा समय व्यतीत हुआ। जिसके कारण कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बड़ी मधुर है, अद्वितीय है।